भारतीय महिला राजनीतिज्ञ श्रीमती सुषमा स्वराज। माथे पर मैरून बिंदी, मांग में सिंदूर, मध्यम कद, चेहरे में तेज, खूबसूरत रंग की साड़ी में आत्मविश्वास से भरे कदम लेते हुए वे संयुक्त राष्ट्र संघ के पोडियम की ओर पहुंचे। वाड़ी में ओज लिए महासभा को संबोधित करते हुए वे पाकिस्तान पर जमकर गर्जी और उसे आतंकवादियों की फैक्ट्री घोषित कर दिया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जीवा पर सरस्वती विराज गई हैं। बहुत ही साफ शब्दों में वे पाकिस्तान को चरमपंथ छोड़कर भारत के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं। आज हम जिस प्रभावशाली और ओजस्वी वक्ता की बात कर रहे हैं वे हैं बेमिसाल शख्सियत की मालिक, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, भारतीय राजनेता श्रीमती सुषमा स्वराज, जिन्होंने देश और विदेश के हर एक मुद्दे को बारीकी से सुलझाते हुए न केवल वे वरीयता के पहले पायदान पर पहुंची बल्कि आम लोगों के हृदय पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में श्री हरदेव शर्मा और श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर सुषमा स्वराज का जन्म हुआ। इनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे। बचपन से ही सुषमा को कविताएं और कहानियां पढ़ने और याद करने का बहुत शौक था। 1970 में अंबाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज की संस्कृत तथा राजनीति विज्ञान विषय की 18 वर्षीय छात्रा सुषमा को सर्वश्रेष्ठ छात्रा और 3 साल तक एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार मिला। उन्हें हरियाणा के भाषा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगातार 3 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार प्रदान किया गया। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने डिबेट्स में कई पुरस्कार जीते। ग्रेजुएशन के बाद सुषमा ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की शिक्षा प्राप्त की और 1973 में महज 21 वर्ष की आयु में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुषमा की इन उपलब्धियों को देखकर कोई भी कह सकता था कि उनका भविष्य प्रखर और उज्जवल है, लेकिन शायद कभी किसी के मन में आया भी हो कि सत्ता के गलियारों में जहां पुरुषों ने वर्चस्व हासिल किया है, वहां केवल अपनी मेहनत और लगन से वे एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगी जिसे आने वाला समय सदा याद रखेगा। युवा पीढ़ी की नेता मानी जाने वाली सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में अपनी शुरुआत 1970 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता के रूप में की थी। 13 जुलाई 1975 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने सहकर्मी वकील श्री स्वराज कौशल से विवाह किया। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित इमरजेंसी के खिलाफ सुषमा स्वराज ने कई विरोध प्रदर्शन किए। उनके पति स्वराज कौशल बड़ौदा डायनामाइट के केस में उलझे समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के वकील थे और सुषमा स्वराज उनकी लीगल डिफेंस टीम में शामिल हुई। वे एक असाधारण वक्ता और प्रचारक थी। जॉर्ज फर्नांडिस को जून 1976 में गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर के जेल में रखा गया था। 1977 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल से ही नामांकन भरा और चुनाव लड़ने का फैसला किया। तब सुषमा मुजफ्फरपुर पहुंची और पूरे क्षेत्र में हथकड़ियों में जकड़े जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर दिखाकर प्रचार किया। उन्होंने जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा का नारा दिया जो लोगों की जुबान पर छा गया। सुषमा ने जय प्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय राजनीति में सजगता से आगे बढ़ते हुए 1977 में जब पहली बार सुषमा ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली तो उनकी उम्र 25 साल थी। 27 साल की उम्र में ही जनता पार्टी की राज्य अध्यक्षा का पद संभाला था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1996 में सुषमा स्वराज सूचना और प्रसारण मंत्री बनी और लोकसभा वार्ता के लाइव प्रसारण का एक क्रांतिकारी कदम उठाया। 1998 के सूचना एवं प्रसारण और दूरसंचार विभाग के उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फिल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा। इस फैसले के बाद भारतीय फिल्म उद्योग को बैंकों से कर्ज मिल सकता था। इसी वर्ष उन्होंने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे 7 बार सांसद और 3 बार विधायक चुनी गईं। एक विनम्र इंसान, सक्षम राजनेता, प्रभावी पार्लियामेंटेरियन और कुशल प्रशासक मानी जाने वाली सुषमा स्वराज श्री वाजपेयी के बाद सबसे लोकप्रिय वक्ता थी। परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास, सुषमा स्वराज के इस उद्घोष से NRI हो या भारतीय, सभी उनके जबरदस्त फैन थे। उनका नाम ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली विदेश मंत्री के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जब भी कोई सुषमा जी को ट्वीट करके मदद मांगता तो वे हमेशा हाथ आगे बढ़ाती थी। यमन में फंसे 5,500 से ज्यादा लोगों को सुषमा स्वराज ने बचाया था और इस ऑपरेशन में भारतीयों के साथ 41 देशों के नागरिकों को सुरक्षित उनके देश पहुंचाने में मदद की। चाहे 8 साल की बच्ची गीता, जो कई वर्षों पहले भटककर सरहद पार पाकिस्तान पहुंच गई, या आगा खान फाउंडेशन काबुल में काम करने वाली कोलकाता की 40 वर्षीय जूडित डिसूजा हो, श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण ही वे दोनों अपने वतन सुरक्षित पहुंची। 29 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण खूब चर्चा में रहा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को परिवार के सिद्धांत पर चलाने की सलाह दी। विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान लगातार यह भी खबर आती रही कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नवंबर 2016 में ट्वीट कर उन्होंने आम लोगों को अपनी किडनी के खराब होने और ट्रांसप्लांट की जानकारी दी। नवंबर 2018 में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये फैसला लेने के बाद सुषमा स्वराज ने सरकारी आवास खाली कर दिया और जंतर मंतर स्थित अपने निजी फ्लैट में शिफ्ट हो गईं। ये उनके धनी व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने राजनीतिक या निजी जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके परिवार या पार्टी की साख पर कोई आंच आए। दुनिया को अलविदा कहने के महज कुछ घंटे पहले ही सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुच्छेद 370 हटाने के लिए धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। पर तब कोई नहीं जानता था कि यह सुषमा स्वराज का आखिरी ट्वीट होगा। 6 अगस्त 2019 को उनके देहांत के साथ ही भारतीय राजनीति का सुनहरे पन्नों में लिखा जाने वाला ये अध्याय समाप्त हो गया। श्रीमती सुषमा स्वराज ऐसी कई युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं, जो भारतीय राजनीति के मार्ग पर चलने की इच्छा रखती हैं। उनका निजी और राजनीतिक जीवन सबके लिए प्रेरणा है। भारतीय राजनीति की स्तंभ रही, वे ऐसी मृदुभाषी और मिलनसार मंत्री थीं जिन्हें भाजपा के साथ विपक्ष में तमाम नेताओं और पत्रकारों का भरपूर आदर और प्यार मिला। कोई उन्हें दीदी बुलाता था, कोई उन्हें बड़ी बहन कहता था। भारत की लौह महिला श्रीमती सुषमा स्वराज का प्रेरक कथन, नेता अचानक से पैदा नहीं होता, आपको कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से गुवाहाटी तक के लोगों की नब्ज पहचाननी होती है, आपको उनसे जुड़ना होता है, तभी कोई नेता बनता है। संसद भवन में सदा सदा गूंजता रहेगा। अभी आपने सुना अंजना कपूर के लेख को आरती श्रीवास्तव की आवाज में।